लोगों को शोक या ईर्ष्या कहिए या व्यसन कहिए, और सुनने को समझो कि आप लोगों का व्यसन है या शोक कहिए, किंतु इस बात को नहीं समझते कि व्याख्यान सुनने से कार्यसार साधन करने से आत्मा का कल्याण होता है। एक आदमी बैठ के यहां रोज जाकर के 4 घंटा बैठे और बीमार आदमी है और उसे दुआई की बात खूब सुने और आराम हो रही। एक वैद्य था, उसके यहां एक पेट की बीमारी वाला आदमी गया। वैद्य ने आते ही कहा कि आज ये जो श्लोक है ये तेरे काम का है, ये बहुत ही बढ़िया है, इसका तुम सेवन करो, इसके अनुसार तुम यदि सेवन करो ना तो तुम्हारा ये कोटा मत है तुम जाकर हरतगी का सेवन करो रोज, फिर हरतगी का सेवन किया तो 7 दिन के मकोटा साफ होकर उसकी बीमारी मिट गई। 14 दिन तुम ऐसे ही करता रहा अभ्यास। तो ये माता बहना कहती है कि हमारे को इसका अर्थ समझा दो, और तुम समझाते समझाते हार गए। हम कहते हैं कि अपने घर के ऊपर कोई आवे गृहस्थी के तो उसकी सेवा करनी चाहिए अतिथियों की, मानो भगवान ही हमारे घर के वहां आ गए ऐसा समझ कर उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी हम घर पर गए तो हमारे घर से हमारे गृहस्थी ने कहा कि आप जो एक प्रकार से कहते हो तो उससे उपदेश सुनते हैं तो काम कोई नहीं करे। आजकल अपने चौके में करीब 30 आदमी भोजन करते हैं और के तो सेवदियाल की स्त्री काम करती है और के ब्राह्मण रसोई बनाती है और सब धारी बयान तो जाकर व्याख्यान सुनती है। नारायणी भाई कई दफा हमसे पूछती है कि भाई जी हमारे को कोई साधन बदलाओ। हम कहते हैं कि आए की खातरी करो, उनके एक प्रकार से सुनने की अपेक्षा उसका ज्यादा महत्व है। सुनने की तो तुम लोग देख ही चुके, इतने दिन से सुनते हो क्या लाभ हुआ, और हमारे कहने से कर करके देखो कि उसका कितना लाभ हो। तो हृदय का सेवन करना चाहिए, नहीं कि हृदय का पाठ करना चाहिए। तो हम तो अपने घर की दशा देख कर ये समझते हैं कि सभी घरों में यही दशा होगी। और मन बड़ा हरामी है, वो इसको इस प्रकार से समझाता, चलो व्याख्यान सुने। तो व्याख्यान सुनने में तो कोई परिश्रम होता नहीं और काम करने में होता परिश्रम। तो मन धोखा देता है, मन ये धोखा देता है कि सेवा करने की अपेक्षा सत्संग करने में ज्यादा फायदा है। अरे ज्यादा फायदा नहीं, बस सुनते सुनते एक प्रकार से आयु मिल जाएगी तो फिर सुनने के अनुसार काम कम करोगे। तो काम करने से भी आत्मा का उद्धार होता है कि न कि केवल सुनने से होता है, सुनकर के उसका अनुसार साधन करना चाहिए। तो साधन की बड़ी भारी कमी आ गई, यही प्रधान कारण है कि सुनते तो है अधिक और उसके अनुसार साधन करते नहीं। रुपये में 4 आना भी हम ये कह देने कि 1 आना भी नहीं करते तो भी हमारी बात अनुचित नहीं होगी। हम कहते हैं कि सुनना तो 4 आना चाहिए और 12 आना काम करना चाहिए, फिर आप चार करके देखो एक प्रकार से आपको लाभ हुए कि नहीं हुए। हमने तो बहुत कम सुना है, हम अपनी आयु के बीच के मां सुनने का काम बहुत कम किया है, और हम देखते हैं कि जो सुनने का काम अधिक करते हैं और करने का काम अधिक नहीं करते उनकी उन्नति नहीं होती। इसी में आप ख्याल करके देख लो। तो हर एक माता बहनों को और भाइयों को जो बात सुने बस उसी के अनुसार कार्य आरंभ कर दे तो बहुत जल्दी काम सिद्ध हो सके। हम देखते हैं कि किसी को हम कोई बात के लिए कहते हैं काम करने के लिए तो वो करता तो है किंतु मन मार करके करता है, इसके कारण से उसका ज्यादा फायदा नहीं होता। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है हनुमान को हुक्म करते कि हनुमान, हाँ महाराज, कि लक्ष्मण के जो शक्तिवान लगा है ना तो तुम जाकर के और अपने द्रोणगिरी जो है, द्रोणगिरी माने द्रोण पहाड़ का नाम, वहां जाकर के और तुम सजीवनी बूटी लाओ। बोला जो आज्ञा, उसी वक्त गया हनुमान। अब बूटी को पिछाड़ा नहीं तो पहाड़ को पहाड़ करके ले आए। ये लो महाराज, अब छाड़ करना चाहिए। वो कहता कि महाराज एक प्रकार से थी और ही किसी को भेज दो, मैं तो आपके पास ही बैठा रहूंगा। तो भगवान कहते कि मेरे पास जरूरत नहीं, तेरी मौत हो जा। किंतु भगवान क्या वाल्मीकि रामायण को निकाल करके देखो कि हनुमान तने हमारी आज्ञा का पालन किया और समझो हमारे कार्य को सिद्ध किया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। भरत जी के पास जाकर के हनुमान जी ने खबर दी तो भरत जी क्या कहते कि हनुमान मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। और हनुमान जो है तो समझो कि भरत जी के पास खबर नहीं पहुंचाते या भगवान श्री रामचंद्र जी का हुक्म नहीं पालते तो क्या भरत जी रामचंद्र जी उस सदा के वास्ते हनुमान जी के कहते कि हम ऋणी हो गए। और सीता भी इसी प्रकार हनुमान का उपकार मानती है। हनुमान जी का उपकार सबको ही मानते, क्यों कि एक प्रकार से वे हुक्म का पालन करते थे। जब हनुमान जी ने ये जाकर खबर दी कि सीता और लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम है सो आपन थे, देवताओं के काम को सिद्ध करके, ऋषियों के काम को सिद्ध करके और राक्षस रावण को मार करके और लंका को जीत करके भगवान राम समझो लक्ष्मण और सीता के सहित आ रहे, तो सुनने के साथ भरत जी के हृदय से वहां एक समझो कि अपने प्रेम की लहर जाग उठी और कमक करके भरत जी ने कहा कि आहा तुम कौन भाई, कहां से आए, को तुम पाते कहाते हैं आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए, सीता तुम कौन हो, कहाँ से आए, मुझको तुमने परम प्यारे वचन से सुनाए। तो हनुमान जी कहते हैं मारुत सूत में कति हनुमान, नाम मोर सुन कृपा निधान, कृपा निधान मैं मारुत माने बालू का पुत्र हूँ और हनुमान मेरा नाम है और मैं जाति का बांध हूँ और मैं रघुनाथ जी का एक किंकर हूँ किंकर। ये सुनकर के कि भगवान का भक्त है भरत जी उठे और उसको अपने हृदय के लगा लिया और लगाकर कहा कि आज मेरा अहो भाग्य है जो भगवान के भक्त से मैं मिला, आज भगवान का भक्त मुझको मिल गया, मेरा अहो भाग है। हे तात तुमने जो संदेश आ दिया है इसके बदले में मैं तुम्हारे को क्या दूं? आहा ये ही संदेश है शरी से जग माही, करी विचार देखा कछु नाही, सीता तने जो संदेशा दिया मुझको बधाई दी कि भगवान आ गए, ये इसे के सदृश कोई ऐसा पुरस्कार नहीं कि मैं तेरे को देखकर तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं। मैंने जो संदेशा दिया है इसके बराबर मैंने विचार करके देखा, इसके मूल्य के बराबर इस के लिए कोई पुरस्कार संसार के में कोई है ही नहीं, तो ना ही न पाते उरीण मन तो ही। और अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। हे तात, हे मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे ऋण से कभी छूटने का नहीं। अब प्रभु के चरित्र मुझको सुनाओ और भी ऋणी बनाओ, कैसा भाव है? तो भरजी महाराज का इतना उसके ऊपर भाव क्यों हुआ कि वो सेवक था, उसने सेवा की कि भगवान का सेवक, आज भगवान का दास मुझको मिल गया। तो भगवान का दास कहते कि भगवान का हुक्म पालता है। भगवान ने हनुमान को हुक्म दिया कि हनुमान जाओ, तुम एक प्रकार से खबर दो। महाराज ने सोचा कि हनुमान के दिल में जितनी प्रसन्नता होगी मेरी आज्ञा के पालने से, इतनी प्रसन्नता किसी को भी नहीं हो सकती, इसलिए हनुमान को भेजा। देखो, अपने लोग भी विचार करके देखो कि हम लोग भी देखते हैं कि अमुक आदमी जो है ये तो तुरंत उस काम को करेगा, ये दूसरा जो आदमी है ये एक प्रकार से थी समझो उसमें नुक्ता चीनी लगा देगा। तो हम लोग भी उसी को ऑर्डर देते हैं कि जो बड़े हर्ष के साथ और आनंद के साथ प्रेम के साथ काम करता उसको, तो ये उचित ही बात है। तो आप देखो कि हनुमान जी कितने एक प्रकार से थी आज्ञाकारी थे, जो एक प्रकार से थी हुक्म का पालन एक प्रकार से ठीक नहीं करता है ना, उसको समझदार आदमी कभी ऑर्डर नहीं देता। तो भगवान की आज्ञा पालने के प्रभाव से थी हनुमान जी आज इतने उच्च कोटि के हो गए। बहुत से आदमी तो हनुमान जी को ही अपना इष्ट देव मान करके उसकी भक्ति करते हैं, हनुमान को इष्ट देव मानते हैं। देखो कैसी आश्चर्य की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए उनको इष्ट मानना तो युक्ति संगत शास्त्र संगत है, किंतु हनुमान तो कोई साक्षात परमात्मा नहीं समझा, वो तो एक प्रकार से भगवान का भक्त है। तो उस भक्त को भी लोग इष्ट मान करके साक्षात इष्ट देव मानते हैं, भगवान को इष्ट नहीं मान करके हनुमान को इष्ट मानते हैं। तो ये कितनी महत्व की बात हनुमान के लिए है, हनुमान को ऐसी पदवी कैसे मिली कि भगवान का दास होने से, उनकी आज्ञा के पालने के प्रभाव से, और कोई बात नहीं, सुग्रीव का दास होने से नहीं, बाली का दास होने से नहीं, भगवान का दास होने, इन सब बातों को ख्याल में रख कर करके और हम लोगों को सेवा भाव को अपनाना चाहिए। हम लोगों के माँ ये सेवा भाव की बड़ी भारी कमी आ गई। स्वामी जी तो कभी कभी कहते हैं कि भी कहने की तो बात नहीं है, किंतु हम लोग साधु होकर के और यह बात जनाए कि आप लोगों के वहाँ साधुओं का आदर नहीं, सेवा नहीं, भाव नहीं, उनके साथ में कैसा बर्ताव करे ऐसा भी आप नहीं जानते, तो हमारे लिए लज्जा की बात। लज्जा की बात इसलिए कि हम लोग साधु श्रेणी में, और हम ये कहें कि भी साधुओं की सेवा का भाव तुम लोगों में नहीं है, तो एक प्रकार से कैसे सेवा करानी हुई, हमारे लिए तो लज्जा की बात है, किंतु लज्जा की बात उनके लिए है, अपने लिए तो उनकी बड़ी दया है। अपने तो ये समझना चाहिए कि उनकी बड़ी दया है, किंतु दया होकर के भी हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। भगवान की बड़ी दया पर लाभ हम कहाँ उठा रहे हैं, महात्माओं की बड़ी दया किंतु उसकी दया से हम लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। तो साधुओं की जो सेवा है, सत्कार है, आदर है, नमस्कार है, समझो कि उनको भिक्षा देना है, अन्न देना, वस्त्र देना, आवश्यकता चीज देना, एक प्रकार से जब इसमें कोई एक सुधार नहीं होता है तो वो कुछ भी हेतु नहीं है। तो हर एक गृहस्थी का ये काम है कि अपने घर के ऊपर, साधु की तो बात ही क्या है, कोई भी अभ्यागत आ जावे और उसकी सेवा की जाए तो उससे जो गृहस्थी को लाभ होता है उसके समान और दूसरा कौन सा काम है, आप ही बतलाइए। यदि निष्काम भाव से थी अपने गृहस्थी आदमी अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर ले वे, तो उस गृहस्थ धर्म के पालन से थी उसकी मुक्ति हो सकती है। इसके विषय में बड़े बड़े दृष्टांत संसार के वहां मौजूद है। आप देखिए कि राजा रंती देव थे, राजा रणजीतदेव की इस प्रकार से कथा आती है कि अपने घर के ऊपर कोई अतिथि आते थे, साधु ब्राह्मण की तो बात ही क्या, चाहे घर के ऊपर चंदा राजा में तो उसकी भी वह सेवा करते थे और उसको समझो कि संतुष्ट करके भेजते थे। तो एक समय की बात है, इस प्रकार से राजा रणजीतदेव करने लगे। रणजीतदेव के हृदय में बड़ी भारी दया थी और उनका समझो कि प्राणी मात्र के मां उच्च भाव था। ये भाव था कि भगवान सब में विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। और दया भाव भी था, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर के उनका हृदय पिघल जाता था। तो एक समय के बीच के मां समझो कि वे दान देते देते अतिथि सेवा करते करते उनका सारा धन समाप्त हो गया। आखिर के बीच के मां 48 दिन तक उनको खाने को नहीं मिला, भूखे रहे खुद। जब खुद भूखे रहे तो अतिथि को क्या देवे। 49वें दिन उनको समझो कि खाने के लिए कुछ मिला, तो खाने की तैयारी करी, भोजन की तैयारी करी। उस समय के बीच के मां देखते हैं कि कोई अतिथि है तो उसकी सेवा करके और फिर भोजन करे। बाद में देखते तो एक शूद्र बाद में खाया था, पूछा कि भैया भोजन करोगे। बोले हाँ, तो उसको बैठा के भोजन करा दिया। वो चला गया, फिर बाहर में निकल कर देखा तो एक ब्राह्मण खड़ा था, पूछा महाराज भोजन करोगे। बोले हाँ, तो उसको भोजन करा दिया। भोजन करा करके फिर भोजन करने की तैयारी करी। भोजन करने के वास्ते सब तैयार हुए, राजा रणजीतदेव और उसके बाल बच्चे, उसकी स्त्री उनके बिना एकदम व्याकुल हो रहे हैं। 48 दिन के भूखे एक प्रकार से समझो बिलबिला रहे हैं सब उनके बिना। तो उस समय के बीच के मां समझो कि आपने भोजन की तैयारी करी, क्या भोजन करेंगे। इतने समय के बीच के मां एक चंडाल आ गया मैं तक और साथ में बहुत से कुत्तों को लेकर गया और कहा कि राजन आप बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं और ये मेरे कुत्ते भूखे हैं और मैं भी भूखा हूं, क्या हम लोगों को खाने को तुम दे सकते हो। तो बोला हाँ। तो जो कुछ उनके पास में था संध्या उनके सम्मुख कर दिया और वे कुत्ते और वो चंडाल सब खा करके और वहां से चल दिए। अब राजा ने देखा कि बचा क्या, तो एक सिकोरा जल का बचा जिससे एक मनुष्य की प्यास बुझ सके। उसने सोचा कि थोड़ी बार तो प्राण बचेंगे तो एक जल का जो सिकोरा इसको ही पी लो। तो उसको पीने की तैयारी करी, इतने में एक दूसरा चंडाल आ गया। बोले राजन मैं बड़ा प्यासा हूँ, क्या मुझको दे सकते हो। बोले तू पी ले। उसको पिला दिया, खाता बराबर हो गया। अब कैसे मिली, अब चंडाल तो गायब हो गया और उसी वक्त से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रगट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रगट हो गए और उन्होंने कहा कि राजन हम लोग ही कुत्तों के रूप में, चंडाल के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, शूद्र के रूप में आए थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांगो, तुम वरदान मांगो। राजा ने कहा कि महाराज मुझको तो कोई बात, तपोवन के मां एक शीलोच्च वृत्ति करने वाले ब्राह्मण थे। शील और ऊंच, ऊंच वृत्ति कहते हैं कि किसान लोग खेत में से खला काट करके घर में अन्न ले आते हैं, उसके बाद में समझो कि जो खेतों के मां अन्न के किनके जो गिर जाते हैं हर उसको बीन बीन करके, चुन चुन करके, इकट्ठा करके उससे अपना जो जीविका करता है उसको कहते हैं कि अपना ऊंच वृत्ति। और जो खेतों के बीच के मास है समझो कि धान काट लिया जाता है और फिर धान उनके जो जड़ रह जाती है उसे फिर धान फूटता है, जैसे समझो कि जवार है, बजरा है, कोई भी चीज है वो फूटते हैं और फिर उसके बीच के मास सिट्टा निकल करके फिर धान योग से पड़ जाता है, उसको शीले की सीटी कहते हैं। उससे जो वृत्ति करने वाले हैं वो शील वृत्ति वाले ब्राह्मण समझे जाते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण है वो ऋषि के तुल है। तो उस प्रकार की उसकी वृत्ति थी। पूर्व के जमाने में किसान लोग एक प्रकार से समझो कि खला काट करके ले आते थे तो उस जान बूझ करके किसी अन्न अपना बिखेर दिया करते थे ब्राह्मणों के लिए। भूमि पर पड़ा हुआ जो अन्न है वो ब्राह्मणों का है, इस वास्ते उनका नाम भूदेव है। और जो सिर दूसरी बार जो अपने आप से खेती होती है उसका उसमें ब्राह्मणों का हक है, किसान का नहीं। तो यह मर्यादा थी, उसके अनुसार अध्यानों लाखों ब्राह्मण जो है वृत्ति करते थे और वो वृत्ति उत्कोटि की वृत्ति मानी गई है। तो इस प्रकार की वृत्ति करने वाला एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण को 7 दिन तक खेतों में कहीं अन्न नहीं मिला। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और ब्राह्मण का लड़का और उसकी स्त्री चारों मारे भूख के, एक प्रकार से उनका पेट लफ गया था और भूख के मारे अपने व्याकुल हो गए थे। तो 7वें दिन उनको किसी एक खेत के बीच के माँ कुछ दाने मिले, तो चुन चुन कर इकट्ठा कर करके और उसे जो थे जो की फिर धानी बनाई। जो को धानी का मतलब है कि जो को भूख को पीस बना एक प्रकार से आप भोजन, तो उसको भोजन के लिए बैठा दिया। आजकल मेरे हिस्से का हम लोग पिताजी मेरे हक का जो है वो भी इसको दे दो। कहा कि बहू तुम समझो कि यह अवस्था आ रही है तो तू तेरे हक का मत दे। बोले नहीं, जब आप सबने दे दिया तो मैं भी मेरे हक का देना ही चाहती हूँ, अनुरोध करने लगी। तो उनका आदेश देकर के उसके ससुर ने अपने पुत्र वधु का जो हिंसा है वो भी ब्राह्मण को परोस दिया। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण देवता सुनकर सब खा गए, अब खा गए खत्म हुआ मामला। ब्राह्मण समझो कि हाथ धोकर के चलू करी और समझा, फिर ब्राह्मण देवता प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता बोले प्रकट हो गए कि मैं साक्षात धर्मराज हूँ और आप लोगों की परीक्षा लेने के वास्ते ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ मैं आया। तुम लोगों ने मुझको जीत लिया, तुम धर्मात्मा हो, चलो तुम इसी शरीर से थी अपने उत्तम लोगों को परम धाम को। तो धर्मराज खुद दीवान में बैठा करके उन चारों को अपने सो ले गए, तो चारों के चारों उत्तम गति को चले गए। उनके उत्तम गति के जाने के बाद और ब्राह्मण देवता जहाँ चढ़ू करी थी हाथ धोया था उस जूठे पानी के बीच के माँ में लोट पर लेट लगाई तो आधा सोने का हो गया। मैंने सोचा राजा युधिष्ठिर का जो जग है वो बहुत एक प्रकार से थी भारी हुआ है, उसकी बड़ी लोग प्रशंसा करते हैं, चलो वहाँ चल करके स्नान करेंगे तो वहाँ आधा सोने का नहीं सोड़ा ना हो जाएंगे। तो यहाँ आकर के उसने लोट पर लेट लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से राजन ये